ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद जुबैर से समाचार सुनिए। भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई समझौतों पर आज हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद आज नई दिल्ली में ये समझौते हुए। दोनों देशों ने नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के मद्देनजर शांति बहाली के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दोनों देशों के बीच कई नई शुरुआत हुई हैं। श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी सहित कई संस्थानों में सुधार की जरूरत है। जर्मन चांसलर ने कहा कि जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बन गया है और वह आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते का भी पुरजोर समर्थन किया। इससे पहले दोनों नेता हैदराबाद हाउस में सीईओ फोरम में शामिल हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत जर्मनी B2B संबंधों पर उनका मार्गदर्शन दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर 4.5 साल के सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के सैनिकों के देपसांग और डेमचौक क्षेत्रों में पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेना के सूत्रों के अनुसार इस महीने के अंत तक सीमा पर गश्त फिर से शुरू हो जाएगी, जो क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत और चीन के बीच हाल ही में पूर्वी लद्दाख में LAC पर सैनिकों की गश्त के संबंध में सहमति बनी थी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस समझौते से सैनिकों के पीछे हटने और अप्रैल 2020 में उत्पन्न हुए तनाव का समाधान हो सकता है। उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार के अनुसार राजनयिक और सैन्य स्तर पर हुई बातचीत से स्थिति को सामान्य बनाने में मदद मिली है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज समाप्त हो गया। इस चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज चौथा दिन था। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। ओडिशा में चक्रवात दाना से प्रभावित केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर और जगतसिंहपुर के तटीय जिलों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और मरम्मत कार्य चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ओडिशा आपदा त्वरित कार्यबल सहित कई विभाग सड़क संपर्क और बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। उड़ीसा के कई जिलों में इस भीषण तूफान के कारण बिजली के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में पूर्वी तथा पश्चिमी मिदनापुर, झाड़ग्राम और दक्षिण 24 परगना जिले में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजीव शंकर ने आज कहा कि प्रसार भारती जल्द ही अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। इस OTT प्लेटफॉर्म पर बहुमूल्य अभिलेखीय महत्व और समृद्ध अनूठे सामग्री का खजाना लेकर सामने आएगा। पटना में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए श्री शंकर ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।